consumption. तीन बातों की चर्चा है। सबसे पहली तो जीवन मुक्त स्थिति, दूसरी विदेही स्थिति और तीसरा तीन बातों की चर्चा। तीसरी बात सेवा और स्थिति का बैलेंस। तो कहाँ से शुरुआत किया बाबा ने? बाप दादा बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, क्यों?
लास्ट संस्कार थी
सभी भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे, भाग्य विधाता को जाना और पहचाना। जो लास्ट पुरुषार्थी है, लास्ट या उसमें ऐड कर दो लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट
लीस्ट
सबसे कम, इंग्लिश इंग्लिश एलईएस लीस्ट सबसे लास्ट और सबसे लीस्ट पुरुषार्थी है, वो भी संसार के जो पदमपति है, जो भाग दूसरी आत्मा है उनसे भी आगे भाग्यवान है, उनसे भी अधिक भाग्यवान है। तो इस संसार में हम सबसे अधिक भाग्यवान आत्माएं हैं। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे हैं, क्योंकि उसको जाना और उसको पहचाना। तुमसे अधिक भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं है, ना कोई था ना है और ना ही कोई रहेगा, सारे कल्प में हो नहीं सकते। तो एक तो सबसे अधिक भाग्यवान और दूसरे सबसे अधिक साहूकार धनवान संपत्तिवान। क्यों? क्योंकि पदम पति की तुलना में तुम्हारे उन हमारे खजाने और उनके खजाने, हमारी तुलना में उनके खजाने कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे हर कदम में पदम, कौन सा कदम? याद का कदम। तो हर कदम में यदि पदम जमा हो रहे तो कितने खजाने जमा हो रहे? सारे दिन में कितने खजाने जमा हो रहे? इतने खजाने और किसी के हो नहीं सकते। खजानों की लिस्ट बाप दादा को भी क्या है? हर एक बच्चे पर रूहानी नाज। किस लिए? इन खजानों के लिए। खजानों की लिस्ट सामने ला, कौन कौन से खजाने हैं? अविनाशी खजाने, उनके विनाशी खजाने, स्थूल खजाने, तुम्हारे अविनाशी खजाने। कौन कौन से खजाने गिनाए? पांच खजाने गिनाए। ज्ञान का खजाना, हमें अनुभव हो कि हमारे पास ज्ञान है। जैसे खजाना रहता है तो अनुभव होता है ना, स्थूल में अनुभव होना चाहिए कि मेरे पास खजाना है। तो वैसे ही अनुभव हो कि हमारे पास ज्ञान का श्रेष्ठतम खजाना है। तो ज्ञान का, गुणों का, सर्वगुण हमारे अंदर है, सतयुग के नहीं अभी के, सर्वगुण संपन्न वहां के नहीं अभी के, सोलह कला संपूर्ण उधर नहीं अभी, तो सर्वगुण और सर्वशक्तियों के खजाने, सर्वशक्तियां हमारे पास हो ऐसा अनुभव हो। स्वयं को जब कंट्रोल करना चाहो तब कंट्रोल कर सको, स्वयं पर जब शासन करना चाहो तब शासन कर सको। तो स्वयं पर शासन करना, स्वयं को कंट्रोल करना और जो विभिन्न भिन्न शक्तियां, सर्व शक्तियों का अनुभव, सहनशीलता की शक्ति का अनुभव और
खुशी।
सबसे बड़ी हमारी खुशी का एक खजाना है हमारे पास। इस संसार की कोई भी बात हमें दुखी नहीं कर सकती। इस संसार की चाहे कुछ भी होता रहे, कोई भी हलचल होती रहे,
स्थिति के बाद
तो हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। और अंत में दुआ है, सबको सुख शांति का जो रास्ता बताया उस आधार से उनकी दुआएं मिलती है, बाप की भी दुआएं मिलती है क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन किया। आगे बोला है ना कि जड़ चित्र अभी जितनी दुआएं जमा करने का समय अभी है, फिर तो दुआएं देंगे द्वापर से जो जड़ मूर्तियां हैं। तो ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, पवित्रता का खजाना, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, संतुष्टता का खजाना, पवित्रता, ये सब भी खजाने, पवित्रता की जायदाद का बनता है। तो ये सभी खजानों को ना हमको अनुभव हो, इस संसार में हम सबसे अधिक धनवान हैं, richest in the world, डेवलपमेंट सबसे अधिक श्रीमंत, सारे कल्प में हमसे अधिक दौलतमंद, साहूकार, श्रीमंत, धनाढ्य कोई नहीं है इस संसार में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे खजाने, परंतु हमें हमारे खजानों का पता चाहिए, वो अनुभव हो कि हमारे पास खजाने हैं, वो खजाने अनुभव अविनाशी है, ये भी अनुभव। नवा ने कहा ना, इतना तुमको नशा चढ़ता है, बाप को तो रूहानी नाज है, तो तुमको भी नाज और नशा, तुमको भी नाज और नशा है। और वहां ये भी कहा कि इसमें हाथ उठाने के लिए कहा, फिर उसके लास्ट में कहा कि ये जो तुम्हारा नशा है अभी है और सदा रहेगा, निश्चित है, ये जो नशा है तुम्हारा है सदा रहेगा और निश्चित है। तो मुरली की शुरुआत कहाँ से है? समान से, पहले बाबा बता रहे तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, फिर बाद में शिक्षाएं बाद में चालू होती है, फिर बाद में बताया कि पुरुषार्थी या मेजोरिटी पुरुषार्थी है बस, और जीवन मुक्ति और विधेयी बहुत कम। पर शुरुआत कहाँ से है कि तुमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं, तुमसे अधिक धनवान कोई नहीं, तुम्हारी तुलना में उनके खजाने कुछ भी नहीं है, तुम्हारे खजाने सबसे ज्यादा, यहाँ से शुरुआत है।
उनके पास तो स्थूल धन है,
स्थूल धन है, वो भी आज है और कल नहीं, ये अविनाशी खजाने है, इसकी अनुभूति होती है, अदृश्य खजाने है। और जितनी आत्मा इन खजानों से भरती है उतनी ही उसे संतुष्टता की अनुभूति होती है, उतनी ही वो शक्तिशाली होती है, अगर ये खजाने हैं तो। फिर बाबा ने हाथ उठवाए ना, दो हाथ को तकलीफ नहीं दो क्यों? बाबा को आवाज पसंद ही नहीं है, बाबा को स्थूल कोई भी चीज पसंद नहीं है, चाहे समर्पण समारोह का, उसमें भी कहा जीवन बंधन मुक्त का समर्पण समारोह मनाओ, उसे स्थूल कुछ भी पसंद नहीं है, उसे आवाज पसंद ही नहीं है, क्यों पसंद नहीं है? तो रहता कहाँ है? आबू में रहने वाला कोई मुंबई चला जाए 10 दिन के लिए कितना परेशान हो जाए, इतनी आवाज, इतनी ट्रैफिक, नींद, हाँ वो भी ट्रेन की पटरी या पार्ला सेंटर में निरंतर, वहाँ एयरपोर्ट ओम निवास के ओम, वो वहाँ चले जाओ तो बस, वो रेलवे स्टेशन बाजू में निरंतर आवाज आती रहती है ट्रेन आने जाने की, या तो एयरपोर्ट से उड़ने की प्लेन की, तो
बहुत गर्मी वहाँ,
तो ये सारी बात है। तो वो कहाँ रहता है? ऐसी जगह बे आवाज, चुप्पी, खामोशी, निस्तब्धता, निशब्दता, निरीवता, निरवता है वहां पर, एक आवाज है ही नहीं, आवाज का गम है। बाबा ने मुरलियों में आता है साकार मुरलियों में परम धाम अर्थात जहाँ आवाज का गम है, आवाज गम, वैसे मुरलियों में आता है ना साकार मुरलियों में, वो धाम जहाँ पर आवाज का गम है, आवाज नहीं है बाबा इस रीति से बोलते हैं उसको, यहाँ आवाज है ही नहीं,
आवाज का गम नहीं है,
गम है वहां पर ऐसे कहते। तो जहाँ आवाज ही नहीं है ऐसे स्थान पर वो रहता है निरंतर, और सडनली यहाँ आके आप जोर जोर से हैप्पी बर्थडे और वो कौन से गीत बजाते हैं, जोर जोर से गीत बजाते हैं ना बहुत जोर जोर से, मेरा बाबा आ गया है तेरे से भगवान को पसंद नहीं है बहुत ज्यादा आवाज उसे तो बाबा इस संसार में जब आता है तो उसे आवाज पसंद नहीं है क्योंकि वो खुद स्वयं आवाज से परे रहता है, वो स्वयं देह से परे रहता है, इसके लिए उसको वो बच्चे आकर्षित करते हैं जो विधेय स्थिति में उसके जैसे मुंबई में जाएंगे तो वहां हम ढूंढेंगे ना मधुबन वाला कोई है क्या इधर तो वो विधेयी स्थिति में रहता है तो उनको ढूंढता है जो विधेयी अवस्था में है, वो आता है तो उनको ढूंढता है जो आवाज की दुनिया में रहते आवाज से परे है, और उसको ये टाली तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी कभी बजाने को कहता है वो अलग बात है, परंतु उसकी टाली अर्थात ताली एक हाथ की ताली है।
नहीं यहाँ पर भी तो बोला ना ताली बजा सकते
हो, फिर बोला हाथ की ताली उसको पसंद ही नहीं, मेहनत उसको कोई भी
हाँ वो रुके नहीं
ब्राह्मण शांति प्रिय, ब्राह्मणों की हर बात निराली, हर बात यूनिक अद्भुत अनूठी अद्वितीय, ऐसी हर बात अद्भुत है, अलग है, संसार के जैसे नहीं है। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी चलन सब कुछ भिन्न है संसार से, संसार की तरह नहीं हो सकती। अगर वो रही है तो क्या करें, उसे बदलने की आवश्यकता है। ये संसार अलग संसार है, वो संसार दूसरा संसार, उस संसार से निकलकर हम इस संसार में आ गए, तो ये और वो उसकी कुछ सीमा रेखा चाहिए। जैसे सन्यासी होता है ना, वो भगवे वस्त्र पहनता है तो उसको निरंतर स्मरण रहता है कि मैं अलग ये अलग, वो कभी उसके साथ में जाते हुए भी उसको ये निरंतर स्मृति रहती है कि मैं वो नहीं जो ये लोग हैं, ये गृहस्थी है, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को निरंतर स्मरण रहता है। तो ये तो दिव्य परिवार है, अलौकिक परिवार है, हम यहाँ आ गए तो यहाँ की हर बात निराली है, अलग है, वैसी नहीं है जैसी संसार की। फिर क्या कहा बाबा ने, तो ब्राह्मणों की हर बात निराली है, फिर ये इसको यहाँ पूरा किया। फिर समय की रफ्तार, समय के परिवर्तन की रफ्तार तेज है, इसके लिए तुम्हारे पुरुषार्थ की रफ्तार बाबा आज देख रहे हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं, हर एक जीवन मुक्त स्थिति में रहे, ये चाहते हैं। जीवन में रहते समय नाजुक होते, समस्याएं परिस्थिति वायुमंडल डबल दूषित होते भी भिन्न भिन्न विधि से बंधनों से मुक्त
सूक्ष्म
एक भी सूक्ष्म बंधन न हो। कितनी ऊंची बात कही, आगे इसी जीवन बंधन को बाबा ने विस्तार किया है कि जीवन मुक्ति और जीवन बंध, जीवन बंध के धागे अज्ञानी के लिए क्या है, लोहे की जंजीर है, यहाँ क्या है, जीवन बंध के धागे, ऐसे धागे हैं सूक्ष्म महीन रॉयल आकर्षण करने वाले, पर्सनैलिटी फील कराने वाले नहीं, वैसा अर्थ नहीं उसका है। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो तो लुक एट योर ओन पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को हम फील तो करते हैं, हम देखते हैं परंतु पहचान नहीं पाते, और सोचते हैं महसूस करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को फील करते हो ना, अपनी पर्सनैलिटी को आप देखते हो, उसके बाद भी महसूस क्या करते हो कि ये धागे बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये तो ये धागे कैसे हैं, बहुत ही सूक्ष्म धागे। बाबा ने कहा एक भी बंधन ना हो, यह है जीवन मुक्ति स्थिति, एक भी बंधन ना हो। स्थूल बंधनों की बात नहीं चल रही है, अज्ञानी आत्माओं के बंधनों की बात नहीं चल रही है, जो ज्ञानी तो आत्मा है उसके बंधनों की बात चल रही है। कैसे भागे, बहुत सूक्ष्म, कैसे धागे हैं, अति महीन आकर्षण करने वाले बांधने वाले, और रॉयल
रॉयल
धागे, ऐसे धागे हैं कि जो समझ में ही नहीं आता, दूसरा तो जज ही नहीं कर सकता। ये भी माया है, इतने सूक्ष्म ये बंधन है। कौन कौन से बंधन है निखिलेश भाई, कौन कौन से बंधनों की बात चल रही है? और बाबा क्यों कह रहा है कि बंधन मुक्त बन जाओ? कौन से बंधन? एक भी बंधन ना हो। किस बंधनों की बात है ये? स्थूल बंधनों की बात नहीं है, ऐसे सूक्ष्म बंधन जो जन्म जन्म आत्मा को बांध देते हैं, एक जन्म के लिए नहीं, किसी और आत्मा से जन्म जन्म के लिए बांधते है। इतने सूक्ष्म लगाव की धागे कहां? धागे रस्सिया बेड़िया जंजीरे नहीं, हाँ वो चैन भी नहीं, धागे 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 होते हैं, छोटे धागे ये, इसके धागे होते हैं ना, ये धागे इसके, ये धागे, ये धागे की बात चल रही है। कौन से धागे है? धागे बंधन, बंधन ऐसे क्या है कि जिसने हमको इस देह में बंध के रख बांध के रखा है?
अच्छी बातें भी बांधती है ना
सभी, उसमें अच्छी बातों की बात चल रही है, सारी अच्छी बातों की बातें चल रही
है।
महिमा सुनने की इच्छा,
स्तुति
सुनने की इच्छा, कीर्ति प्रशंसा, ये सारी बहुत ही महीन धागे। नाम
महिमा नहीं की तो
बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, परंतु फीलिंग आती है, फीलिंग आती
है। जो फिटी यस है ना, उसको उत्तम कहा जाता है।
किसको?
फिटी यस
50 साल को,
कीर्ति को,
हाँ तो कीर्ति तो अच्छी बात है ना, कीर्ति होना अच्छी बात है, परंतु उस कीर्ति का हमारे पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम कीर्ति तो होगी, होने दो, अच्छे काम करोगे तो कीर्ति होनी ही है, अच्छे कार्य करने पर कीर्ति तो होगी, परंतु उस कीर्ति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव पड़े ही ना, कुछ ही ना पड़े। वो आज कीर्ति करने वाले कल निंदा भी करेंगे, तो आज कीर्ति, आज स्तुति कर रहे, कल निंदा जब करेंगे तो दुख ना हो फिर। अगर हमने उसको स्वीकार किया और हमने उसको माना कि हम बहुत बड़े हैं, उसने कहा कि आप बहुत महान हो, हमने भी माना कि हम महान है, उस रीति से नहीं, ज्ञान की रीति से नहीं, अलग रीति से, कि भाई एक विशेषता के कारण उसने कहा महान है, हमने भी ये स्वीकार किया कि सही है, इसमें तो बाकियों में ये विशेषता नहीं है, मुझ में है, और इस बात को हमने स्वीकार किया, तो वो बंधन है। एक
उसमें लिखा है अधम जो है धन की प्राप्ति करते हैं, मध्यम जो है धन और मान दोनों प्राप्ति करते हैं, और लास्ट में जो उत्तम है वो
सभी की प्राप्ति करेंगे। वो
कीर्ति
तो होगी
और कुछ नहीं।
अभी ब्रह्मा, ब्रह्मा की कीर्ति नहीं है क्या? ब्रह्मा की सबसे ज्यादा कीर्ति उसकी है, सबसे ज्यादा महिमा उसकी, पर उसको क्या अभिमान आ रहा है क्या? वो अभिमान से मुक्त है, वो उसको स्पर्श ही नहीं करता है। उसके ऊपर गीत बने इतने सारे, हमारे ऊपर कोई महिमा के गीत बना दे, कैसेट बन गई तो नागेश भाई आपके महिमा की एक कैसेट बन गई और काउंटर पे गिर बहुत ही सेलिंग लाइक हॉट केक्स तो लगेगा ना, अरे वाह उसमें बहुत अच्छे अच्छे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो।
दो तीन बार फोन करके पूछ लेंगे कितना सेल हुआ
क्या है मार्केट में, क्या पोजीशन है मेरी कैसेट की तो ये धागे हैं, एक तो ये धागा है कि अपनी महिमा सुनने की इच्छा। लोग, हमने सेवाएं बहुत की और हमारी किसी ने महिमा ही नहीं की, सेवाओं का समाचार सुनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा सेवा हमने की, पर नाम है ही नहीं उसमें,
मौका ही नहीं मिलता
क्या? कम किस चीज का मौका?
वही महिमा सुनने का,
सुनाने का,
सुनाने का मौका नहीं देते।
अच्छा, हाँ अपने सेवा समाचार सुनाने का मौका, हाँ दूसरे कोई सेवा नहीं करते, वो सुना रहे, वो भी बड़ा चढ़ा कर गए थे, दो दिन घूम फिर के आए, और मैं कभी एक कहीं रिट्रीट सेंटर पर गया था, तो वहां पे भट्टी करने आए थे लोग तीन दिन के लिए, तो पहले दो दिन तो घूमे यहाँ वहां पूरा गाँव, और लास्ट दिन जिस दिन जाने का था उस दिन एक घंटा योग।
बाबा इसमें कहा जीवन मुक्त स्थिति में ये तो लिफ्ट मिला है,
हाँ ये तो प्रारब्ध की बात कही है बाबा ने कि ये जो प्रारब्ध जो है ना, चाहे अच्छा कोई भाषण कर रहा हो, चाहे सेंटर का निमित्त बना है या कोई भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं का निमित्त बना है, ये प्रारब्ध नहीं, इसको प्रारब्ध नहीं कहेंगे। ये तो आगे बढ़ने की, दूसरों की दुआएं प्राप्त करने की ड्रामानुसार लिफ्ट मिली हुई, ये प्रारब्ध ये नहीं है। ये जो सेवाएं है, सेवाओं का जो विस्तार है, ये योग्यता है या गुण या विशेषता है, ये नहीं है। यहाँ अवस्था है जीवन मुक्त, मतलब ऐसी स्थिति की जिसमें आत्मा मुक्ति का अनुभव इधर ही करे, वो सतयुग की मुक्ति नहीं, सजीवन मुक्ति नहीं, परम धाम की मुक्ति, धाम की मुक्ति नहीं, यहाँ ही इस देह में रहते सदैव, सदेह विदेही स्थिति का अनुभव, सदेह देह में रहते सदेह सदैव विदेही स्थिति का अनुभव, विदेह स्थिति का अनुभव ये यहाँ का है। सदेह नहीं, सदेह, सदेह मतलब देह में रहते, देह में रहते, सदेह सदैव विदेही स्थिति का अनुभव, तो यह अनुभव। तो जीवन मुक्ति अर्थात कोई भी बंधन ना हो, एक भी बंधन ना हो, भावने का इसमें बहुत कम है। पुरुषार्थी बहुत है, पुरुषार्थी में भी जो दो कैटेगरी उसमें भी सारे, कोई अच्छे कोई साधारण, कोई तीव्र कोई साधारण, परंतु ये बात चल रही है कोई भी बंधन मन को बांधे नहीं। एक तो कीर्ति, दूसरा हमें मौका नहीं मिलता, तीसरा बंधन, जो बंधन बांधे हुए है भोजन साधन, साधनों का बंधन वो है साधन, सबसे जबरदस्त माया इस समय कौन सी है, टीवी नहीं है, टीवी इसी में समाया हुआ है,
सब कुछ है,
टीवी का भी बाप है,
इंटरनेट टीवी वाला नहीं, इसमें इंटरनेट भी समाया हुआ है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। ये एक ऐसा जबरदस्त कि आग की तरह है, जला भी सकता है तो खाना भी पका सकता है आपके लिए, नष्ट भी कर सकता है, दोनों चीजें है। चाहे तो वो ब्राह्मण से ऐसा नीचे गिराएगा कि कहां से कहां पहुंच जाओगे। सबसे बड़ी माया भी ये है, तो सबसे बड़ा वरदान भी ये है, एक रीति से देखा जाए साधन ये और इस तरह के बाकी जो भी है। तो साधन भी एक प्रकार के बंधन है जो आत्मा को बांधे हुए है। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे आपने चित्र दिखाया है कि अज्ञानी को बहुत सारे लोहे की रस्सियां विकारों ने बांध रखा है, वैसे ज्ञानी तो आत्मा के लिए ये सारे बंधन अति सूक्ष्म है, महीन है, आकर्षण करने वाले है, रॉयल है।
इसको तो दूसरे बार भी थे, इसको तो
हम ये बंधन हमने ही निर्माण किया। जैसे मकड़ी स्वयं अपना जाल उत्पन्न निर्माण करती है, उसमें अंदर जाती है और फंसती है, वैसे ये जो बंधन है सारे उदाहरण यहाँ हम आए, यहाँ खुद ही फंसती है वो, हम यहाँ आए सर्व बंधनों को छोड़कर, यहाँ आने के बाद कुछ नए बंधन उत्पन्न किए, स्थापन किए, निर्माण किए और उसी में फंस गए। वो बंधन कौन से है, किसी को कुछ बना देना, किसी को बहन बना देना, किसी को भाई बना देना, बहन भाई तो है पर स्पेशल,
किसी को माता जी पिताजी बना देना,
ये स्पेशल, स्पेशल स्पेशल जो होता है, ये सारे बंधन है एक रीति से, तो ये भी एक बंधन है। नए संबंध बनाना, परसों का वरदान, जहाँ संबंध है वो बीज है, संबंध है तो मोह है और मोह है तो बंधन है। तीन स्टेजेस बताई, रिलेशनशिप, अटैचमेंट और बॉन्डेज। तो जहाँ संबंध है वहां माया है, मोह है, और जहाँ मोह है वहां पर बंधन है, और बंधन में एक बार आत्मा आ गई तो दुखों की श्रृंखला वहां से चालू होती है, परवश हो जाती है वहां पर आत्मा। ये तीनों स्टेज, ये बहुत ही पावरफुल वरदान था वो, कि बंधन जो है वो बीज है बाबा ने कहा, ये संबंध, इस संबंध को अगर यहाँ से अगर कट कर दिया जाए तो फिर वो मोह से छूटने की जो जो वो
मेहनत
जद्दोजहद वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये जो संबंध है सारे एक तरफ डायरेक्ट करो, एक बाप से सर्व संबंध, ये बहुत ऊंची अवस्था है, सर्व संबंध उसी से अनुभव, और कोई नहीं है। तू मात पिता बन साजन सखा बन, गीत में है ना, तू मात पिता बन साजन सखा बन, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका वो तख्त फीका। तो बंधनों की बात चल रही, और कौन से बंधन है जो आत्मा को बांधते हैं? भोजन बहुत जबरदस्त एक बंधन है,
निद्रा,
भोजन की आसक्ति, निद्रा भी एक बंधन है। बहुत अच्छी नींद करते रहना, कल परसों मुरली में था ना तुमको नींद कम ही करनी है, कल परसों कहा नींद का आनंद लेना। छुट्टी है तो क्या करे, नींद, सो जाओ 12 बजे से 6 बजे तक आराम से सोते रहो। नींद का, भोजन का, घूमने फिरने का,
भोजन का कहने के बदले स्वाद का,
और स्वाद स्लोलुपता, जो स्वाद है वो खींचता है आत्मा। बहुत कम खाना है,
आसक्ति,
आसक्ति के बिना
आखिरी स्वभाव है ये जो खान पान की बात थी।
फिर और कौन से बंधन है?
अपनी दिनचर्या का भी होता है,
दिनचर्या पावन, हाँ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, परंतु फिर भी वो नियम बहुत अच्छा है। अगर दिनचर्या फिक्स है तो उससे अच्छा और कोई चीज नहीं, परंतु यदि किसी कारणवश यहाँ से वहां जाना पड़ता है तो तुरंत अपने आप को मोल्ड कर सके, फ्लेक्सिबल भी हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वापस आने के बाद में वो दिनचर्या रखनी है, वो जरूरी है सेम दिनचर्या रखना, क्योंकि नियमित जीवन के लिए नियम, वो नियम होना बहुत जरूरी है। नियमों को छोड़ दिया तो हम भटक जाएंगे, इसके लिए वो भी जरूरी है। और भी बहुत सारे बंधन है, तो बाबा ने क्या कहा, एक एक बंधन। फिर वो गुलाब जामुन की बात कही ना वहां पर, हाँ वो प्रश्न पूछा कब से होंगे, बने हो या बनेंगे, तो सबने हाथ उठाया, तो बाबा ने कहा चतुर है, क्योंकि मिक्स आंसर, बने भी और बनेंगे भी, बनना ही है, और एक प्रश्न आगे भी पूछा, तो कहा चतुर है, तो वो ये नहीं खाओ उसका जीवन मुक्ति का उपाय। फिर उसके बाद में तीन बातें कही, तीन प्रकार, कौन सी तीन स्टेज है? पहली स्टेज पुरुषार्थ की है, दूसरी स्टेज जीवन मुक्ति, तीसरी स्टेज देह में रहते विदेही स्थिति का अनुभव। फिर उसके बाद में जीवन मुक्ति का विस्तार किया सर, और उसके बाद में विदेही स्थिति, विदेही स्थिति के लिए क्या क्या कहा, बहुत कम बातें कही है जीवन मुक्ति के लिए बाबा ने, अगर देखा जाए तो मतलब पॉइंट्स एक दो ही है, बहुत ज्यादा नहीं है जीवन मुक्ति। हाँ अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज कहा ना उसमें, हाँ एक दो तीन चीज, दो तीन चीज हम भूल गए कि चाहो चाहो न चाहो, नहीं बहुत अच्छा वाक्य है वो, चाहो नहीं चाहो, चाहो या
चाहे
नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो तो बाबा ने कहा है कि बाप को हरेक को जीवन मुक्त बंधन मुक्त बनाना ही है, और फिर अपने लिए कहा है कि तुमको बनना ही पड़ेगा, चाहे चाहे चाहो नहीं, ऐसा नहीं है मुरली जी के पास
जीवन में
नहीं बनी, वो नहीं, चाहे न चाहे चाहो न, हाँ वो ये राइमिंग सिस्टम है, जैसे वो मुरली में बाबा ने बीच में कहा था जाने न जाने वो जाने, ये आप सबको संदेश दो, बाकी वो आए या ना आए उनका काम है, जाने न जाने वो जाने, वैसे ये
नहीं
नहीं वो नहीं,
चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो,
चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना ही पड़ेगा, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, च च च च च एलिट्रेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच में आता है, अलंकारिक भाषा का होता है, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो बनना ही पड़ेगा, बाप को बनाना ही है और तुमको बनना ही पड़ेगा, ये दोनों बातें। फिर विदेही स्थिति के बारे में क्या कहा,
प्रकृति के
सबसे पहले तो परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ है और आने वाली है, फिर वो 99 का बीच बीच में आ गया ना, कि उसके चक्कर में मत जाओ।
आप क्या सोचते थे,
मैं उसके थोड़े बाद आया
नहीं, नहीं।
अच्छा वैसे
उसके बारे में क्या, 2000
थोड़ा
कम्फर्टेबल बंद होने वाला था, उन्होंने सब देखा 99 में सारे श्राप स्टोर का जितने भी श्राप समुद्र में जाके डाल दिए।
अच्छा
बड़ा ये
मुझे याद नहीं अभी हम क्या
गेट पूरा हो गया
विनाश की लहर तो थी थोड़ी बहुत परंतु
आपकी वायरा की वायरा गया प्लस हो गया होगा ना कुछ तो आपको
बड़ी खरम वाले
विनाश की बात
यार की कम
विनाश से संबंधित ये वैराग्य विनाश से संबंधित है यहाँ आके बाद में सब पता चला वो वैराग्य था वो संसार है ही नहीं मिथ्या है उस आधार पर वैराग्य था यहाँ पता चला संसार है और वो खत्म होने वाला है थोड़ा कम हो गया वैराग्य इधर आने के बाद वहां जो थोड़ा ऊपर था कि ये संसार है ही नहीं मिथ्या है जो दिख रहा है वो भ्रम है माया है नाम और रूप है यहाँ आके पता चला कि नहीं वो है तो थोड़ा वैराग्य ऊपर जो था वो कम हुआ आने के बाद तो विदेही स्थिति के बारे में क्या कहा परिस्थितियां है परिस्थितियां आनी है परंतु प्रभाव नहीं डालेगी जो आत्मा विदेही स्थिति में एक तो ये और परिस्थितियां आएगी और जाएगी कैसी वो बादल की तरह होगी बादल आए और बादल गए आखिर में वो भी कहा ऊपर से नीचे जोड़ा हुआ परिस्थितियां है आएंगी पर प्रभाव नहीं डालेगी एक तो ये बात दूसरी परिस्थितियां आई भी तो वो बादल आए और गए ऐसे हो और ये तो हो गया परिस्थिति दूसरा है पांच तत्व हिलाने की कोशिश करेंगे परंतु आत्मा हिलेगी नहीं
ब्रह्मा बाप सम्मान
जो ब्रह्मा बाप सम्मान जो क्योंकि ना पाथ फील्ड ऑनर होंगे वो उधर विदेशियों को भी कहा कि ब्रह्मा बाप सम्मान सबूत देना है अव्यक्त बाप दादा की पालना का प्रत्यक्ष सबूत विदेशियों से कहा आगे तो करियत तो विदेही स्थिति वालों के लिए और क्या कहा कोई भी परिस्थिति उनको प्रभाव नहीं डालती बहुत करता है तो ये अभ्यास करना है कौन सा विदेही स्थिति का तो मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है विदेही स्थिति का विदेही स्थिति अर्थात देह में होते हुए भी देह से अलग काम को इसके लिए क्या क्या किया जाए ये है चिंतन का विषय कि बार बार देह में आना और देह से जाना यह अभ्यास रूहानी ड्रिल जिसको कहते हैं ना साकारी और निराकारी साकारी आकारी निराकारी आकारी भी ले लो तो ये देह में आना और जाने का अभ्यास कि मैं अभी अभी इस तन में हूँ अभी अभी परम धाम में अभी अभी इस तन में हूँ अभी अभी परम धाम में ये एक अभ्यास दूसरा बाबा ने कभी कहा है कि हरेक को आत्मा देखो आकृति को देखते हुए भी उसमें आकर्षण मूर्त जो है उसको देखो ये महावाक्य है बाबा आकृति को देखते हुए भी आकर्षण मूर्त जो चैतन्य है उसको देखो तो चरित्र बन जाएगी तो देह को देखते हुए देह को न देखते हुए देखो पर न देखो पर आत्मा दिखे देही को देखो एक तो ये अभ्यास दूसरा आने जाने का अभ्यास तीसरा अभ्यास परिस्थिति सबको परिस्थिति देखना या परिस्थिति अपने आप को मेहमान समझना गेस्ट समझना माया को गेट आउट करना ये सारे जो बात है और कौन सा अभ्यास किया जाए
उस दिन बाबा
संतुष्ट
दो तीन ड्रिल है
हाँ उसमें वो जो ड्रिल है जैसे दिनचर्या वो उसमें नहीं बताया पर उसी मुरली में आगे है वो क्या कि ड्रिल करो कौन सी विदेही स्थिति की ड्रिल जैसे पानी की प्यास लगती है तो पानी तो पीते हो ना तो समय निकालते हो उसी तरह अशरीरीपन की ड्रिल क्योंकि बहुत समय का जन्म जन्मांतर का बॉडी कॉन्शियसनेस अंत में विदेही नहीं बनने देगा अशरीरी बोले वहां पर अशरीरी बनने नहीं देगा
तीन रूपों का ड्रिल
हाँ तीन स्वरूपों का ड्रिल करो पांच स्वरूपों का ड्रिल करो या दो स्वरूपों का ड्रिल करो या केवल आत्मिक स्वरूप का ड्रिल या आत्मा देखने का अभ्यास ये सारा अभ्यास चालू रहे ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है जो अंदर ही अंदर हमारा चालू रहे मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ उसमें बाबा ने विदेह प्लान के लिए कहा बीच में ना एक पैराग्राफ आ गया कि क्या प्लानिंग करोगे तो बाबा ने कहा कि साक्षी और विदेही स्थिति में प्लान बनाओ और फिर सेकेंड में प्लेन स्टेज पे आ जाओ मतलब ये बहुत अच्छा अभ्यास है इसका क्या उदाहरण हो सकता है कि साक्षी और विदेही स्टेज में प्लान बनाओ प्लान बनाया और सेकेंड में प्लेन स्टेज में आ जाओ मतलब जो प्लान है उससे भी आसक्ति नहीं कुछ किया कुछ हमने तैयार किया अगर किसी को भाषण देना है उसने भाषण तैयार किया उस भाषण से भी आसक्ति नहीं किसी को कोई सेवा करनी है उस सेवा का पूरा फॉर्मेट बनाया ये उससे भी आसक्ति नहीं किसी ने कोई प्रेजेंटेशन बनाया उस प्रेजेंटेशन से भी आसक्ति नहीं बनाया और उससे अलग। हाँ मतलब ये कितनी बहुत ऊंची अवस्था है ये, तो ये ऐसी अवस्था चाहिए। विदेही साक्षी स्थिति में रहकर प्लान बनाओ और फिर सेकंड में प्लेन स्टेज में आ जाओ, जैसे हमने किया ही नहीं, हमको पता ही नहीं, अलग। हाँ एकदम अलग हो जाओ उससे, अपनी सेवाओं से भी अलग होने का अभ्यास चाहिए। नहीं तो वो सेवाओं में कर्म कॉन्शियस होके रहते हैं ना सारे दिन भर, वो सेवाओं से इतना अलग हो जाए कि फिर हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है। इतना मानसिक डिटैचमेंट, मेंटल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं हम लोग संसार की रीति से। बहुत अच्छी अच्छा चीज है ये। कर्मयोग अर्थात क्या, संसार का कर्मयोग होता दिन रात कर्म करते रहो, सेवा ही करते रहो, सेवा ही करते रहो, बस ये है कर्मयोग। हमारा कर्मयोग ये नहीं, हमारा कर्म कर्म करते हुए भी विधेयी, कर्म करते हुए भी अलग, कर्म करते हुए भी डिटैच उसकी याद। हमारा कर्मयोग एकदम भिन्न है संसार से, ये ऊंचा है बहुत। तो विधेयी स्थिति के लिए और क्या था, बस उतना ही है, दो तीन ही बातें हैं विधेयी स्थिति के लिए। हाँ फिर वो तो आगे आगे ना सेवाधारियों से बात करते हैं, विधेयी स्थिति के लिए बस इतना ही। फिर आगे सेवाधारियों से मुलाकात, मुबारक दी और क्या कहा फिर उनको, अभी सेवा और
स्थिति,
स्थिति का बैलेंस, अगर बैलेंस है तो ब्लेसिंग मिलेगी। किसकी ब्लेसिंग मिलेगी, बाप दादा की, ब्राह्मण आत्माओं की, ब्राह्मण परिवार की, साथी सर्व आत्माओं की ब्लेसिंग मिलेगी। और जितनी ब्लेसिंग होगी उतनी द्वापर, द्वापर से क्या, जड़ चित्रों से आत्माओं को दुआएं मिलेगी। पर दुआएं जमा करने का समय अभी है, संगम योग है। तो वो कैसे जमा करेंगे, उसकी श्रीमत पर चलेंगे या फिर ये जो बैलेंस की बात कही, और ये सबका अच्छा ही होना है। फिर ये नहीं सोचो क्या होगा, होगा नहीं होगा, होगा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जो है ना इसको फिनिश करो भगवान का, अच्छा ही होगा। पर जो बैलेंस वाले हैं उनका सदा अच्छा होगा, जो कम बैलेंस वाले उनका, वो निगेटिव नहीं बोला है बाबा ने, उसमें पॉजिटिव बात बोली है, कम अच्छा निगेटिव नहीं बोला है, कभी अच्छा बहुत अच्छा तो कभी कम अच्छा, निगेटिव नहीं बोला उसमें भी पॉजिटिव बोला। जिनका बैलेंस नहीं उनका कभी कभी कम अच्छा भी होगा, तो वो दोनों बात है। तो ये इसमें क्या है, बाबा ने इसमें बल कहा ना, सेवा का बल, नहीं फल, फल सेवा का बल और स्थिति का बल। कभी कभी ये जो बैलेंस इधर टिल्ट हो जाता है, इधर एक तरफ चला जाता है, सेवाएं करते करते स्थिति खराब हो जाती है या फिर गुम हो जाती है। तो ये दोनों चीजें चाहिए, सेवा और स्थिति दोनों का, पहले स्थिति का बल बढ़ाना ज्यादा, वो तो स्वतः ही होते रहेगा, वो सेवा के लिए मुश्किल नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है, सेवा तो स्वतः ही होती है, सहज होती रहती है। पहले स्थिति आगे कर सेवा को, सेवा में आगे बढ़ो, स्थिति को आगे बढ़ाकर स्थिति में आगे जाकर सेवा को आगे बढ़ाओ, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ। सेवा तो अभी सबको आदत है ना, जो जिसकी सेवा है वो तो बुद्धि में कुछ भी चले वो आप ही होती रहती है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता है ही नहीं उसमें। बाबा ने कभी नहीं, दादी ने शायद क्लास में कहा है कि प्रकाश ने दादी कि जैसे ही सेवा होती है अपने आप को बिंदु रूप में स्थित करो, मतलब विस्तार में केवल सेवा में जाओ, सेवा की, और जैसे सेवा फिनिश हुई तुरंत बिंदु रूप में आ जाओ वापस, वहां पर तुमको विस्तार करना नहीं, मतलब अशरीर हो जाओ। फिर वो नए न्यू कमर जो आए उनको वेलकम किया, फिर गुजरात की जो कुमारी है अहमदाबाद की उनके लिए क्या कहा, केवल ये समारोह नहीं, कौन सा समारोह चाहिए उसको, जीवन बंधन मुक्त का समारोह मनाओ, और वो भी कैसे, पहले मैं, बड़े करे या ना करे, पहले मुझे जीवन मुक्त, कोई हुआ या ना हुआ पर मुझे अपने सारे बंधनों को समाप्त करना है। और भी क्या कहा, आपस में रूरियान करो इस बारे में, और क्या करो, एक दूसरे को वायदा याद दिलाओ कि हमें मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है। फिर उसके बाद में पंजाब से क्या कहा, पंजाब की जमीन कैसी है, कलराठी की, उसको फलदायक बना दिया। और पंजाब क्या है, शेर, तो शेर को क्या करना है, नंबर वन शेर कौन है, जो शेर का शिकार, यहाँ शेर का तात्पर्य किससे है, जो विशेष वारिस है मंडलेश्वर, हाँ मंडलेश्वर, ये मंडलेश्वर, तो उसको लेके आओ। शेर शेर का शिकार करता है
नहीं, वो तो बाबा
बोलने के लिए आध्यात्मिक रीति से वो शेर अर्थात वो विशेष वारिस या मान
शेर
शेर या शेर नहीं
शेर ही बोल रहा है
शेर बोल रहा है। फिर लास्ट ग्रुप विदेशियों से क्या कहा? एक विषय एक बात बहुत अच्छी लगती है बाबा को, कौन सी? कि नए नए घर बनाते हैं तो हर एक घर बाबा का घर हो, घर घर में बाबा का घर हो, ऐसे बोला ना, घर घर में बाप का घर हो, उनमें उमंग उत्साह है, कौन सी? कि बाबा के स्थान बढ़ाने का।
नेपाल वालों ने बोला
ये विदेशी है ना, डबल विदेशी, डबल विदेशी
उसने यही बोला था।
एवरी हाउस शुड बिकम बाबाज होम, इंग्लिश ट्रांसलेशन इतना सुंदर है कि हाउस बाबा का होम बन जाए। होम और हाउस अलग अलग है, हाउस जो बनता है वो ईटों से बनता है और घर जो बनता है, होम जो बनता है वो प्यार से बनता है, व्यक्तियों से बनता है। इंग्लिश में होम और हाउस दो है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वाक्य का है एवरी हाउस शुड बिकम बाबाज होम, ऐसा ट्रांसलेशन इस बात का। घर घर बाबा का घर घर बन जाए, हर घर बाबा का घर बन जाए, तो ये
मकान बाबा का घर,
मकान आज घर ही बोला दोनों जगह पर, वो मकान और घर की बात। हाँ वो एक बात बताइए, ये विशेषता बाप दादा को अच्छी लगती है। और क्या कहा वहां पर उनको? उनके लिए भी वही कहा कि बैलेंस, विधेयी स्थिति, विदेही का सबूत का डायरेक्ट ब्रह्मा बाप के अव्यक्त बाप दादा की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। कौन सा सबूत? जैसे ब्रह्मा बाबा ने विदेही स्थिति से कर्मा की अवस्था को पाया, उसी तरह तुम्हें भी करना है। कैसे? विदेही अवस्था से। कैसे भी बात आ जाए, कैसे भी आ जाए, खुद कहकर दिखाओ कि हमें करना है। और वहां पर उनको उनके लिए भी कहा कि दोनों का बैलेंस रखो। तो यहाँ पे मुरली पूरी हुई, तो पूरी मुरली का सार, हाँ हाँ ब्लेसिंग मिलेगी सारी मुरली का सार। तो बाबा ने सबसे पहले तो कहा कि सबसे ज्यादा भाग्यवान आप हो, संपत्तिवान आप हो, और उसके बाद में जीवन मुक्त स्थिति, मतलब हमें अपने बंधनों की लिस्ट निकालनी है और उनसे मुक्त होना, एक तो ये, और दूसरा बार बार विदेही स्थिति का अभ्यास करना है, और तीसरा सेवा करते करते सेवा में खो ना जाए, सेवाओं के जंगल में खो जाती है आत्मा। इतना घना जंगल है कि वहां जाने के बाद लकड़ियां लेने गए थे, वो लकड़ियां गुम कहां गई पता नहीं, उसमें सुख तो बहुत है परंतु लक्ष्य वो नहीं है ना, तो कभी अच्छा कभी थोड़ा कम अच्छा होगा। फिर बाबा चाहते हैं कि स्थिति, अभी आवश्यकता स्थिति की है, एक एक वाक्य ऐसा भी है मुरली में, अभी आवश्यकता स्थिति की है, और अंतिम समय को नहीं देखो, अंतिम स्थिति को देखो।
ये पॉइंट तो रही
है,
सोचो अंतिम स्थिति के बारे में सोचो,
उसी टाइम बारे में,
हाँ वहीं पे
99 के बाद
आएगा, 99 के बाद। तो वो ये नहीं सोचो क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क को फिनिश करो, आश्चर्यवत होने की बजाय इसको फिनिश कर दो। तो सेवा, पहले तो बंधन, कौन कौन से बंधन है और मुझे इन बंधनों से मुक्त होना, एक तो ये अभ्यास, दूसरा बार बार विदेही अशरीरीपन का अभ्यास, और तीसरा सेवाओं में इतना ना चले जाओ कि स्थिति खराब हो जाए, गुम हो जाए, पता ही नहीं चले कहाँ। स्थिति शक्तिशाली हो, स्थिति शक्तिशाली हो, उसके लिए अपना जो कर्म है उसमें भी एक्यूरेट रहना है, उसमें दिव्य गुण सारे चाहिए, फिर अपने कर टाइम पर आना, टाइम पर सब करना, एक्यूरेट करना, उसमें ईमानदारी होना, दिव्य गुण सारे चाहिए, क्योंकि अगर वो, हाँ याद और वो सारे दिव्य गुण, मतलब सारा साइमल्टेनियसली सब कुछ करते रहना है, नहीं तो हम अगर, नहीं तो ऐसा भी है केवल ज्ञान योग में ही लग गए और सेवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसमें गलतियां होने लगी तो वो भी श्रीमंत नहीं है, वो भी गलत है। जैसे हमारे पास,
हाँ
तो ये मार गई, ऐसा है कदम कदम फूक फूक के चलना है, इधर तलवार की धार ही है ये, बार बार कहीं पर भी गिर सकते हैं, कहीं पर भी गिर सकते हैं, ऐसा इतना बाबा ने कहा ना, अटेंशन प्लीज, बहुत 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 तीन बार बहुत अटेंशन की जरूरत है उस स्थिति को पाने के लिए, और इस दोनों स्थिति के लिए, जीवन मुक्त के लिए भी और विदेही के लिए भी। क्या कहा? बहुत 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 अटेंशन की आवश्यकता है, ऐसे ही थोड़ी ना भगवान आके कह रहा है कितना अटेंशन चाहिए, क्योंकि इसमें बाबा ने देखा है ना कितने लोगों को गिरते हुए,
बहुत काल का अभ्यास,
एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास, और इतना अटेंशन, सूक्ष्म अटेंशन तो भी नहीं हो पाता, इसके लिए कहा ना ये मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, इतना आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है, हाँ वो तो मुरली याद कर लेना, उसको रिपीट कर लेना, उसकी चर्चा कर लेना एक तरफ, प्रैक्टिकल में आते हैं तो कुछ और होता है,
प्रैक्टिकल में नहीं होता,
वही कहा तो वो, पर ये कहो भी नहीं कि नहीं होता, बाबा ने कहा होगा तो हम संकल्प तो रखें कि होगा, परिस्थितियां हर दिन नई नई है, हर दिन नई परिस्थितियां, हर दिन माया अपना एक नया रूप धारण करके हमारे सामने आती है, हमको समझ में नहीं आता कि ये माया है, इतनी रूप बदली, इतना रूप बदली, इतना रूप बदली कि वो समझ में ही नहीं आता,
माया महा ठगी,
हाँ तो ये उसका जो ठगने का तरीका है वो हर दिन बदलते रहता है, हर दिन क्या, दिन में कितनी बार बदलता है,
दिन में कितना,
बहुत बार वो पता ही नहीं चलता है, अभी अभी कभी वो दाढ़ी लगा के आती है, कभी मूंछ लगा के आती है, कभी अपना भेद बदल के आती है, अलग अलग, कभी स्त्री पुरुष, कभी स्त्री बन के, कभी पुरुष बन के, कितने भिन्न भिन्न रूप धारण करती है,
नहीं कोई एक सीरियल आता था पहले टीवी पे, उसमें भी माया ने तुलसीदास का कोई ऐसा सीरियल था जो भेद बदल गया था तो हनुमान को पहचानता था सिर्फ पैर से, तो ये चाहे जितना भी भेद बदल लेता है उसका काल आ गया था हनुमान,
वो तो देखो अभी हनुमान राम के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, उसको भी धोखा होता है, वो जब वो संजीवनी बूटी लेने जाता है तो एक राक्षस वहाँ काल नेमी बनकर बैठता है, अभी हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं है राम, वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जिसके हृदय में राम के अतिरिक्त तो कोई नहीं है, फिर भी वो जब उसको देखता है तो उसको लगता है कि वो काल नेमी राक्षस राम श्री राम श्री राम जप रहा है तो उसको लगता है राम भक्त है, मतलब हनुमान को भी धोखा हो गया, देखो सीता को धोखा हो गया वो तो छोड़ो, क्योंकि उसकी तो बुद्धि भ्रमित हो गई थी, पहले ही मोह उत्पन्न हो गया था, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो ब्रह्मचारी है, हनुमान ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी की प्योरिटी की पावर है, उसके बाद में भी वो पहचान नहीं पाया, बाद में तो कहीं वो स्नान करने जाता है, वहां पे मगरमच्छ रूप धारण करके बताया था कि वो साधु नहीं है, वो तो राक्षस है, तब उसको पता चलता है किसी और से, तो हमारा भी मार्ग ऐसा ही है, चाहे कितना भी महाज्ञानी महापंडित हो फिर भी माया को पहचानना, इसके लिए सारा पुरुषार्थ है माया की स्टडी करने का, बाप की स्टडी बहुत कर लिया, बाप को बहुत सुन लिया, अभी फर्क दोनों में इतना है कि बाप ने अपना परिचय स्वयं दे दिया कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ऐसा हूँ, माया अपना परिचय नहीं देती है, माया को
बाबा
देता है, पर खुद वो जब तक वो खुद ना दे तब तक थोड़ी ना होता है, महाभारत में दिखाया है दो शत्रु है, एक है भीष्म और दूसरा है द्रोणाचार्य, भीष्म से भी अधिक अजयी जो है वो द्रोणाचार्य, क्योंकि भीष्म ने तो अपना राज बता दिया खुद, मैं कैसे मरूंगा, स्त्री को मेरे सामने आ जाओ लेके आ जाओ तो मैं मर जाऊंगा, मैं शस्त्र डाल दूंगा, तो कृष्ण उधर से चाल चलता है श्रीखंडी को सामने लाता है, पर द्रोणाचार्य ने कुछ बताया नहीं, अब मुझे कैसे पर वरदान तो दे दिया विजयी भव तुम्हारी विजय, पर मेरी हार कैसी होगी ये नहीं बताया, तो वो तो वो चाल दूसरी है अश्वत्थामा की कहानी, तो यहाँ पर भी बाबा ने तो अपना सब संपूर्ण परिचय दे दिया, तो उसको पहचानना, बाप को पहचानना तो कठिन है, परंतु माया को पहचानना बहुत उससे ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा कठिन, तो सारा फोकस अभी माया है क्या, ये किस किस मार्ग से आती है, क्या क्या उसका स्वरूप है,
माया के ऊपर ही करना,
हाँ तो वो अभी उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन करो कि माया का क्या स्वरूप है, और भी कुछ है आज वरदान,
वरदान
नजारे, जैसे तुमने जन्म लिया और आगे बढ़ने का संकल्प किया, अर्थात परिस्थिति और समस्याओं का आह्वान कर लिया है, तो ये रास्ता है, रास्ते में नजारे तो देखेंगे, परंतु नजारों को देखना नहीं है, उसको करेक्शन नहीं करना, करेक्शन करने लगेंगे तो यहाँ का कनेक्शन लूज हो जाए, ये ऐसा करता है ये वैसा करता है, इसने ये नहीं है उसमें वो नहीं है, ये उठता नहीं है, इसका योग अच्छा नहीं है, इसका चिंतन अच्छा नहीं है, ये आवाज क्यों करता है, ये फोन पे क्यों लगे रहते हैं, इंटरनेट पे क्यों बैठे रहते हैं, ये टीवी क्यों देखते हैं, ये क्रिकेट क्यों देखते हैं, ये घूमने क्यों जाते हैं,
क्यों नहीं
जो जिसको करना है करने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर उसको ठीक करने जाओगे तो उसके बदले का शिखा वो तुम टारगेट बन जाओगे 10 दिन के लिए उसके चिंतन का, वो छोड़ेगा नहीं तुमको, कमेंट करते रहेगा, छोड़ेगा नहीं बिल्कुल बदला। हाँ उस दिन सुनाया था ना किसी को, कहा 10 दिन से कमेंट करना। तो किसी को भी ज्ञानियों को ज्ञान नहीं सुनाना, ठीक है ना शिवानंद भाई, ज्ञानियों को ज्ञान का इंजेक्शन दूंगा तो रिएक्शन होता है। ज्ञानियों को नहीं, अज्ञानियों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ, ज्ञानियों को ज्ञान का इंजेक्शन लिया तो एनाफिलेक्टिक शॉक रिएक्शन होता है पूरा, टॉलरेट नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते ज्ञान के इंजेक्शन को। तुरंत तो कुछ कुछ होता है उनको, पल्स बढ़ जाती है, ये सब होता है, फिर आपको नहीं छोड़ेगा वो इंजेक्शन लगाने वालों को, क्यों लगाया।
हमारे एक भाई यहाँ हमें डेली आके पूछते रहते हैं अच्छा वरदान क्या है, वरदान क्या है ना, बताने के बाद वो वापस आए तो मैंने पूछ लिया उनसे, बोला हो गए क्या है इतने साल से
नहीं सुना,
इतना भी नहीं बता पाते हैं क्या, बता नहीं पाए, लेकिन बता नहीं पाए फिर भी बहुत
मुश्किल। स्वयं को देखना, स्वयं को ज्ञान समझाना, बस किसी और को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। वरदान स्लोगन
मर्यादाओं के अंदर रहना,
वो तो
मर्यादा
पुरुषोत्तम। तो ये थी आज की मुरली, इसका और अच्छे से चिंतन करके आज यही खत्म करें। अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि संजय भाई आप थोड़ा इधर आ जाना, 5 मिनट पूरा। कोई भी दो लोग, संजय भाई और शिवानंद भाई, ठीक है ना, आधा आधा बांट लो, आधा आधा, ताकि अभी से अगले संडे की कल से चालू करो अध्ययन करना, कल से 6 दिन तो बहुत है एक अव्यक्त वाणी के लिए, उसका पूरा पढ़ना, वापस रिवाइज करना, वापस चिंतन करना, प्रैक्टिकल के कुछ अनुभव है तो उसके साथ जोड़ना और उसको थोड़ा सुना, तो थोड़ा हमारा चिंतन बढ़ता है, ठीक है। ओम शांति।